शुभ भावनाओं से भरा हो हृदय तो प्रस्फुटित होता भाग्योदय। इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि द्वारा। अरुणेंद्र कुमार जी, फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स ए ग्रेट ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म विंग ऑफ राज्य योग एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन विच इज अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू। That issue is calmed down during lockdown. Lockdown forces you to be within indoors, and your activity has been curtailed, not for a day or two, but now over 50 days. And this has been a cause of trauma for so many as to how to adjust. Lot of my colleagues and including myself take one weekly off, and to have 50 offs in one row, that too inside the confines of your house, it should be a flat, be a bigger flat or a residence type of house, but confinement itself is a big punishment. How to make best out of it, that's a very big question, and most of us have done reasonably well as well. So we must first understand as to how to calm down during this lockdown and maintain yourself the way you have been, even or even better than what you have been. Most importantly, you have to stay safe, meaning that the normal activity which you are used to, while you used to go and do some work or business or meeting people or travel, we must maintain same level of physical activity in some form. Apart from the restrictions and the suggestions for COVID control, the best way is to do morning yoga exercises. Do not be carried away by what you see on the TV screens. Your body cannot take every kind of curve which that asana shows, but do what you can easily endure, and for about 40 to 50 minutes every day in the morning. It's very refreshing. I've been doing it for last almost now 17 years, and it starts the day. After having done that, you have to find new strategies as to how to occupy your time. You will never get such free time anymore in your lifetime. These kind of eventualities do not happen. They should not happen. But when they provide such kind of quality lifetime with the family, please take full advantage of it. Connect with your children, connect with your spouse, and connect with your elderly parents, if you have one, if you are lucky to have one rather. So, how do you do that? Play games with them and make them curiosity flourish. Playing together, eating together is the best thing of emotional feed which you can do at this time of knowing each other well. Otherwise, it's always either you are on the WhatsApp or on the mobile phone or seeing some cartoons, that life should be abandoned. You should be the hero, your children should be the heroes, and the time spent together will be such nourishing that it will be remembered in future. Having done that, you must think of finding out something new, of knowing something new. For example, you can learn some music, let me flute or mouth organ, or a new language, maybe Indian, maybe foreign, depending what is your liking. Such free time you will not get. So much of knowledge is available on the computer, on the laptop, that you can assimilate. That is being very lucky in the present moments, which was not so 15 years ago or even 20 years ago, or the Spanish flu when we had in early 20th century. So make full use of your time, connect with your family, learn new techniques, and remain physically active. All this will give you so much of mental, emotional feed that you will be fit and agile when the lockdown is over and you emerge from a healthy calm down to a normal way of life. I wish you all the very best in the times to come and pray to God that the COVID era is over once for all. Thank you, ladies and gentlemen.
Inspirational lecture series ke aaj teesre din Compassion in Action विषय को सुंदर वार्तालाप के रूप में अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर काउंसलर एंड कंसल्टेंट डॉक्टर स्वामीनाथन एवं पॉपुलर स्पिरिचुअल स्पीकर सिस्टर श्रेया.
Shanti or Namaskar. Transport or Travel Wing or Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalay ki taraf se aap sabhi bhai behnon ka main aaj ke satra mein bahut dil se swagat karta hoon. I extend a very hearty welcome to all of you, dear divine brothers and sisters, for this particular session. And the topic for this session is Compassion in Action. हमारे अंदर जो दया भाव है, जो रहम है, जो करुणा है, उसकी अभिव्यक्ति हम अपने कर्म में कैसे करें? दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी और आज का सत्र मैं उस कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बार पापा अपने ऑफिस में बैठे थे और बहुत व्यस्त थे और अचानक पापा को एक फोन कॉल आता है और वो जो फोन कॉल था उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची के स्कूल से फोन कॉल था और मैसेज बहुत ट्रैजिक था. मैसेज ये था कि स्कूल में आपकी बच्ची का दुर्घटना हो गया है और वो इस संसार में नहीं रहे. जैसे ही पापा ने ये सुना, उनको इतना जोर से शॉक लगता है, वो भागते हैं ऑफिस से स्कूल की तरफ, मन में ये प्रार्थना करते हुए कि उन्होंने जो सुना था वो सत्य नहीं होना चाहिए. लेकिन जब स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि द मैसेज इज वेरी मच ट्रू. संदेश एकदम सत्य था. उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, जिनसे वो बहुत स्नेह बहुत प्यार करते थे, अब वो जीवित नहीं है. यह हादसा पापा को इतना जोर से सदमा देता है कि पापा इस हादसे से ऊपर उठ नहीं पाते. हमेशा अपनी बच्ची को याद करके रोते रहते थे. ना ऑफिस के काम में मन लगता था, ना घर में मन लगता था. कुछ दिनों के बाद पापा एक दिन सोए हुए थे कि पापा को एक बहुत सुंदर स्वप्न दिखाई देता है, फरिश्तों की दुनिया, द लैंड ऑफ एंजल्स. और पापा देखते हैं छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते आकाश में उड़ रहे हैं और सबके हाथ में एक मोमबत्ती है, द कैंडल. और उस मोमबत्ती के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता छाई हुई है. पापा ये सीन को देखते हैं और अचानक दूर खड़े उनको अपनी बेटी दिखाई देते हैं. तो पापा बेटी के पास जब जाते हैं तो पापा को बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि उनकी बेटी के हाथ में भी एक मोमबत्ती है लेकिन वो मोमबत्ती बुझा हुआ है। तो पापा पूछते हैं, बेटा सबके हाथ का मोमबत्ती तो जल रहा है लेकिन आपका मोमबत्ती क्यों बुझा हुआ है? और बेटी बहुत सुंदर जवाब देती, बेटी कहते, पापा ये जो मेरे दोस्त है ना पापा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा मेरी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपके आंसू मेरी मोमबत्ती को बुझा देते हैं। ऐसे पापा प्लीज डू नॉट क्राई, पापा प्लीज आप रोना मत। फ्रेंड्स द मैसेज इज वेरी सिंपल, इफ आई एम सैड आई एम नॉट सैड अलोन, आई टेक दिस वाइब्रेशन ऑफ सैडनेस एवरीवेयर वेर आई गो। अगर मैं दुखी होता हूं तो सिर्फ स्वयं दुखी नहीं होता हूं लेकिन जहां पर भी मैं जाता हूं इस दुख के प्रकंपन में अपने साथ लेकर जाता हूं। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ अ पर्सन इज हैप्पी ही इज नॉट हैप्पी अलोन, ही क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ हैप्पीनेस राइट एंड स्प्रेड्स इट अक्रॉस। अगर एक व्यक्ति बहुत खुशी में रहता है, आनंद में रहता है, तो एक आनंद का आभा मंडल लेकर जाता है और समस्त सभी जगह वो उसको फैलाता है। दोस्तों आज जब सारा विश्व इस संकट के समय से गुजर रहा है तो रहम दिल, दया भाव और करुणा की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम स्वयं के प्रति रहम दिल कैसे बने, परिवार, कोरोना वॉरियर्स और प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रति करुणा का भाव कैसे करें, इस बात पर आज हम जरूर जरूर विचार करेंगे। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो और इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कहते हैं है ना, मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो उसका निवारण, उसका रास्ता धरती से ही शुरुआत होती है। दोस्तों आप काफी दिन से अपने घर के अंदर हैं और क्योंकि ये जो सेशन है यातायात प्रभाग के द्वारा आयोजन किया गया है तो क्यों ना आप स्वामी भाई के साथ एक सुंदर यात्रा पर निकले और जीवन के कुछ सैद्धांतिक सत्यों को हम समझे। आप सभी का इस यात्रा में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जो हम यात्रा करेंगे इस मारुति ऑल्टो से यात्रा करेंगे और क्योंकि स्वामी भाई केरला में हैं तो आज की यात्रा हम केरला के राहोम पर आपको लेकर जाएंगे। दोस्तों जैसे किसी भी यात्रा के लिए गाड़ी बहुत जरूरत है, उसी तरह जीवन रूपी यात्रा के लिए प्रकृति ने हमें ये शरीर रूपी गाड़ी दी है। कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि शरीर रूपी गाड़ी का मूल्य कितना है? डॉक्टर्स ने इसकी कॉस्टिंग करने की कोशिश की। कैसे किए? अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो मैं एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं तो मुझे बिल भरना पड़ता है। अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो हम किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और इसकी सारी कॉस्टिंग की गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शरीर रूपी गाड़ी जो प्रकृति ने हमें दी है इसका जो मूल्य है इट इज अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़। मतलब हमारे जीवन रूपी ये गाड़ी कितना महत्वपूर्ण है, कितना बहुमूल्य है, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये गाड़ी का हम मेंटेनेंस करते हैं, स्वयं के प्रति रहम हम इस तरह से कर सकते हैं कि हर दिन हम इस शरीर रूपी गाड़ी का भी हम मेंटेनेंस करें, उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल करें। और सबसे इजी वे ऑफ डूइंग इट इज हर दिन सुबह उठकर हम व्यायाम करें। आज के समय पे सुरक्षा के लिए हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति, वी हैव टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, उसके लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत बहुत जरूरत है। और आजकल एक्सरसाइज करते भी हैं लेकिन हमारा स्टडी ये कहता है कि लोग सुबह उठकर जो भी एक्सरसाइज करते हैं कर तो रहे हैं लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं तो इससे फायदा नहीं होगा। जो भी हम एक्सरसाइज करें उसको हम बहुत बहुत खुशी से करें, बड़े आनंद के साथ करें। तो सबसे पहली बात हम एक्सरसाइज व्यायाम करें। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे हम गाड़ी में ईंधन भरते हैं उसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए भी हमें रिफाइंड और शुद्ध प्योर है ना ईंधन भरना चाहिए। और ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए ईंधन जो है वो है हमारा भोजन। तो भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन हमें कैसा बनाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है दोस्तों। क्योंकि भोजन का डिपार्टमेंट बहनों का है, तो मुझे लगता है किसी एक बहन से हमें चर्चा करना चाहिए। तो मैं मुंबई की बीके श्रेया बहन को फोन लाइन में लेता हूं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि भोजन बनाते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये शरीर स्वस्थ रहे, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। तो चलिए हम श्रेया बहन को फोन लगाते हैं। ओम शांति श्रेया बहन।
ओम शांति स्वामी भाई।
बहन जी बताइए आप कैसे हैं और मुंबई में अवस्था कैसी है?
हम सब यहाँ पर मुंबई में बिल्कुल ठीक हैं, पर आशा है कि आप भी ठीक होंगे।
ओके अच्छा श्रेया बहन, हम एक बहुत सुंदर केरला के इस यात्रा में हैं और मैं चाहूंगा कि इस पूरे यात्रा में आप मुंबई में रहते हुए इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, राइट? अच्छा अब आप बताइए कि क्योंकि बहनें भोजन में एक्सपर्ट होते हैं, तो भोजन तो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, लेकिन और कौन कौन सी बातें हैं जो भोजन बनाते वक्त और करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए? ओवर टू यू श्रेया बहन जी।
आपने जो खाने की बात करी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस खाने का इस समय केवल हमारी फिजिकल बॉडी पर ही नहीं लेकिन मन के ऊपर भी असर पड़ रहा है। अगर हम अपनी डाइट का ध्यान दें तो इस समय हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं और वो चीज हमको इमोशनली स्ट्रांग भी कर सकती है। तो कुछ एक चीजें हैं अगर हम इसमें ध्यान दें। पहली चीज, कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं पर इस समय हम कॉन्शियसली इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। पहला है कि हम अपनी डाइट को ध्यान देकर के वेजिटेरियन बनाएं। हम सब समझते हैं, खास जिनों के घर में पेट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि कैसे एक जानवर महसूस कर सकता है, फील करता है, वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करता है। तो जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो वो बहुत सारे इमोशन से गुजरता है, फियर, एंगर, डर, एंजाइटी, हेट्रेड, और वो सारे के सारे इमोशंस उस खाने के अंदर हैं। और जब हम वो खाना ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो इमोशंस हमारे अंदर आ जाती हैं। हम ये तो जरूर कहेंगे कि वो खाना खाने से हो सकता है कि फिजिकली हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाए या स्ट्रांग बन जाए, लेकिन इस समय पर उन चीजों का हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। पहले ही इस समय वायुमंडल में बहुत ज्यादा फियर है, एंजाइटी है। अब हम ऐसी डाइट नहीं कंज्यूम कर सकते जिसका और हमारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का हमारे मन के ऊपर असर पड़ता है। कभी ऐसे नहीं कहते जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है। तो पहली चीज है वेजिटेरियन डाइट, और हम ये जो खाना बना रहे हैं इसका भोग भगवान को लगना है, फिर ये घर में सबको खाना है और इस अन्न का सबके मन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छी मन की स्थिति में हो सके तो हम कुछ भजन बजाएं या बहुत अच्छा सोचते हुए वो खाना हम बनाएं। वो खाना जब हमारे घर के लोग खाएंगे आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट उनके अंदर देखेंगे। जैसे ही वो ये प्योर अन्न ग्रहण करेंगे उनका मन शांत होने लगेगा, वो राइट डिसीजंस ले पाएंगे। तो खाना सात्विक हो लेकिन खाना बनाया भी बहुत एलिवेटेड स्थिति में जाए। और लास्टली जब हम सब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, घर के सारे मेंबर्स अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो बहुत अंदर में एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। हम सब देख रहे हैं कि इस समय कितने लोग हैं जिन्हों को कभी कभी खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, हम सब उनको हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाना हमारे सामने आता है और हम थोड़ा सा कंप्लेन भी कर लेते हैं, ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। पर इस समय वो खाना हमारे सामने है तो एक थैंक्स की फीलिंग कि कम से कम मेरे पास तीन बारी, दिन में तीन बारी खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, उसको थैंक्स करते हुए, उसकी प्योरिटी के वाइब्रेशंस को खाने में एक बार वापस डाल करके उस खाने को ग्रहण करना है। तो जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर हमारे मन पर पड़ने लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा मन शांत होने लगेगा।
थैंक यू श्रेया बहन जी, आपने इतना स्नेह और प्यार से भोजन के बारे में इतनी सूक्ष्म बातें हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा किया। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी इस यात्रा पर चल रहा हूं, तो इस पूरे यात्रा में आप मेरे हमारे साथ जरूर जरूर रहिए। थैंक यू वंस अगेन। दोस्तों, जैसे हर गाड़ी के लिए ड्राइवर बहुत जरूरी है, हर रथ के लिए रथी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर मैं कौन हूं, तो हमें समझना चाहिए कि मैं शरीर से अलग, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, एक चैतन्य ऊर्जा हूं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं या रूह कहते हैं। हम स्वयं के प्रति करुणा के लिए यह ज्ञान को समझना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि आज समाज में और समस्त विश्व में जो सबसे बड़ा डर है, फियर है, वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। और जैसे ही हमें ये ज्ञान समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा अजय हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मेरा जीवन रूपी यात्रा बड़ा सुखदायी और बड़ा आनंदमय बन जाता है। दोस्तों, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरत है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपना सीट बेल्ट को हम जरूर जरूर पहने, ये बहुत बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये एकाग्रता तब होता है जब हमारी सारी कर्मेंद्रियां जो है जागृत अवस्था में है, जैसे हम जो देख रहे हैं, देखने के लिए ये जो साइड मिरर्स हैं, रेयर मिरर्स हैं, इसका ध्यान देना बहुत जरूरत है। तो हमारे हाथ पैर सारे कर्मेंद्रियों के बीच में एक सद्भावना अगर होगा तो हम अपनी यात्रा बहुत सुरक्षा के द्वारा हम कर सकते हैं, राइट। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा के लिए मैं आत्मा रूपी ड्राइवर के जो कर्मेंद्रियां हैं, और वो है मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख सकता हूं, इन कानों द्वारा सुन सकता हूं, इस मुख द्वारा मैं बोलता हूं, हाथ और पैर के द्वारा मैं अपना कर्म करता हूं। हमको ये जानना जरूरत है कि हम इस जीवन रूपी यात्रा में इन कर्मेंद्रियों का हम सही उपयोग कैसे करें। तो चलिए हम फिर से श्रेया बहन को फोन करते हैं और इस विषय पे जानकारी लेते हैं।
स्वामी भाई, अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाना ये तो बहुत जरूरी है। कई बार आजकल हम कह ही देते हैं ना, बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। ये भी कह देते हैं, देखना नहीं था, मैं इतनी देर तक देखता रहा, मेरा टाइम कितना वेस्ट हो गया। और यहाँ तक भी कह देते हैं कि मेरा हाथ उठना नहीं था लेकिन पता ही नहीं कैसे उठ गया, मुझे उठाना नहीं था। तो ये जब हम इस तरह से कहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरा खुद की कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये तो कोई मास्टर की स्थिति नहीं है। ये तो ऐसे है कि हम अपने ही कर्मेंद्रियों के स्लेव हैं। दुनिया में भी कहते हैं सोच करके बोलो, परमात्मा तो हमको कहता है सोचने से पहले भी सोचो कि जो सोच रहे हैं वो राइट भी है, वो सोचने जैसा भी है। और इसलिए इस समय पहले अपने ऊपर ये रहम करना है, सेल्फ कंपैशन। औरों के प्रति तो हम रहम बाद में करेंगे लेकिन पहले अपने प्रति रहम करें कि इस मन में उठने वाला हर संकल्प की जो क्वालिटी है वो बहुत एलिवेटेड होनी चाहिए। हम गलत सोचते रहें, फिर चिंता क्रिएट करें, डर क्रिएट करें और कहें ये तो नेचुरल है, संसार में सब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं, ये हम चूज कर रहे हैं। हमारे पास पावर है कि हम यहाँ पर क्या सोचें और क्या फील करें। इसलिए जो एक चीज हम यहाँ पर तुरंत अपने जीवन में चेंज लेकर आ सकते हैं कि उस सोच का आधार क्या है। हर एक समझ रहा है कि भले चैलेंजिंग सिचुएशन है लेकिन मुझे राइट सोचना है, फिर भी सोच नहीं पा रहा है, चाहता है लेकिन फिर भी फियर और एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक चीज जो हम शिफ्ट ला सकते हैं, हमारे मन में वही चलता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी खाने की, कि शरीर को क्या भोजन खिलाना है, ऐसे मन को क्या भोजन खिलाना है। जो सारी इंफॉर्मेशन हम चारों तरफ से कंज्यूम करते हैं वो फिर मन का भोजन बन जाता है। और इस समय अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो हम सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन से हम फ्लडेड है, चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, किसी भी प्रकार का मीडिया है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव है। अब हम कहेंगे हम क्या करें, हम इससे सराउंडेड हैं, हमें सुनना ही पड़ता है, हमें देखना ही पड़ता है। नहीं, पड़ता है शब्द नहीं कह सकते, हम चूज कर रहे हैं। अवेयर होना एक बात है, इन्फॉर्म्ड होना एक बात है। इन्फॉर्म तो रहना ही पड़ेगा कि हम प्रिकॉशंस ले सके, हम अपना ध्यान रख सके, हम उन सब नियमों को पालन करके गवर्नमेंट को भी हेल्प कर सके। लेकिन कितनी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करना है, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत हम किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, बहुत प्रकार के डिशेस रखे हुए हैं, लेकिन कई समझते हैं कि नहीं मुझे यही खाना है, ये खाने से मेरी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, अगर मैं ये खाऊंगा तो हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। वो चूज करके वही खाते हैं, 10 चीजें भी होंगी लेकिन चूज करते कि नहीं मुझे ये हल्का खाना खाना है, इससे मेरी बॉडी स्वस्थ रहती है। जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वही हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, वही हमारा कैरेक्टर बनता जाता है। आप दुनिया में जिन भी लोगों को देखेंगे जो महान है, जो बहुत पीसफुल है, जो स्टेबल है, जो लीडर्स हैं, उनमें एक क्वालिटी जरूर होगी, वो हर रोज कुछ अच्छा जरूर सुनते पढ़ते या देखते हैं, क्योंकि वो चीज ऑटोमेटिकली उनके मन को बहुत एलिवेट कर देता है। आज अगर हम एक अच्छी मूवी भी देखते हैं जिस मूवी में कोऑपरेशन की बात हो, काइंडनेस की बात हो, हेल्प करने की बात हो, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारी भी दिल होती है कि हम किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो दिन भर में थोड़ा सा समय चाहे कुछ अच्छा पढ़ें या कुछ अच्छा देखें, और हो सके तो सवेरे के समय उस कंटेंट को अपने अंदर भरें, ऑटोमेटिकली मन अच्छा सोचना शुरू कर देगा। जब मन अच्छा सोचेगा तो जो बोल होंगे वो भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे, जिनसे बात करेंगे उनका भी उमंग बढ़ाएंगे, उनके अंदर भी होप क्रिएट करेंगे, और वो चीज फिर हमारे कर्मों में भी दिखाई देगी। साधारण कर्म कर रहे होंगे लेकिन वो साधारण कर्म भी खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे। नहीं तो अभी कर्म भी कर रहे हैं, हाउसहोल्ड कोर्स भी कर रहे हैं, पर कभी कभी वो फियर एंजाइटी है तो वो हमारे कर्मों में दिखाई दे रही है। हम खुशी से हर कर्म करें तो ऑटोमेटिकली एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने से हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस जो हैं वो पीसफुल होने लगते हैं। और आप देखेंगे जब इनर वर्ल्ड ब्यूटीफुल होने लगता है तो बाहर अगर कुछ नेगेटिव भी है तो हमारा परसेप्शन उसके बारे में चेंज हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कि जब ये चैलेंज हमारे सामने आया या उनके सामने जो हमें लगेगा कि वो फेलियर था या डिफिकल्ट सिचुएशन थी, वो उनके जीवन में आगे बढ़ने का साधन बना, वो उनकी ग्रोथ के लिए स्टेपिंग स्टोन था, वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने उनको कुछ नया अनुभव कराया। तो जब अंदर एलिवेटेड होते हैं तो नेचुरली बाहर भले परिस्थिति है लेकिन वो भी आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। तो खास इन्फॉर्मेशन का इस समय हम ध्यान दे सकते हैं।
थैंक यू श्रेया बहन, आपने स्थूल कर्मेंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी तरह हम सबको समझाया। दोस्तों, जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने की पूर्ण रीति से वो विधि, वो टेक्नोलॉजी जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इफेक्टिव ड्राइविंग के लिए देयर आर थ्री थिंग्स, ए बी एंड सी। ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक एंड सी फॉर क्लच। अगर गाड़ी को बहुत स्पीड चाहिए तो हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं, अगर हमें कहीं गाड़ी को रोकना है तो हम ब्रेक को यूज करते हैं, और अगर हमें गियर को चेंज करना है, गाड़ी के स्पीड को ऊपर नीचे अगर करना है तो हम क्लच को यूज करते हैं। ये तो मोरलेस आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन रूपी यात्रा के लिए भी हमें ये ए बी सी समझना बहुत जरूरत है। और ये आत्मा के तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां तो हमने पहले से जान लिया, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, और वो है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। दोस्तों, जो मन जो है वो एक्सेलरेटर का काम करता है, और मन का काम है संकल्पों का उत्पादन करना, संकल्पों को जनरेट करना, संकल्पों को क्रिएट करना। अब इफेक्टिव ड्राइवर कौन होता है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन यह है कि अगर कोई ड्राइवर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक गाड़ी को एक है ना पहाड़ी पर चढ़ाते हैं या ऊंचाई पर चढ़ाते हैं, सामने एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, और आपकी गाड़ी जो है आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर चला रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव ड्राइवर कौन होता है? आप, मुझे विश्वास है आप सभी मानेंगे कि इफेक्टिव ड्राइवर दूसरा होता है, क्योंकि नेशनल हाईवे में बहुत स्पीड गाड़ी चलाना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन आप ऊंचाई पर चला रहे हैं, चढ़ाई पर आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी। दोस्तों अभी भी हमारी अवस्था कुछ ऐसे ही है, वर्तमान समय हमारी परिस्थिति यह है कि आगे जो है भविष्य असुरक्षित हम महसूस करते हैं, पीछे हमारी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसे समय पर मन को स्थिर होकर धीरे धीरे चलाना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक होता है क्वांटिटी ऑफ संकल्प, दूसरा है क्वालिटी ऑफ संकल्प। दोस्तों अगर हम अपने संकल्पों की गति को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली संकल्पों की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और उसके लिए बहुत बहुत जरूरत है ब्रेक यूज करना। और ब्रेक आत्मा की दूसरी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है वो है बुद्धि। तो बुद्धि निर्णय करती है कि मुझे कितना सोचना है, क्या सोचना है, कब सोचना है, ये सारा निर्णय जो है बुद्धि करती है। इसे जीवन रूपी यात्रा में ये मन बुद्धि को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो है संस्कार। तो दोस्तों ये संस्कार क्या है, आत्मा अपने संस्कारों को कैसे बनाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं, ये जानने के लिए हम फिर से मुंबई में श्रेया बहन के पास पहुंचते हैं। ओवर टू यू श्रेया बहन।
स्वामी भाई, संस्कार परिवर्तन करने से पहले तो हमको ये समझना है कि संस्कार बनते कैसे हैं। कोई भी कर्म जब हम बार बार करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। आजकल हम घर में देखते हैं कि सब एक साथ रहते हैं तो हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, और कई बार छोटी छोटी बातों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी को सफाई बहुत पसंद है लेकिन कोई बहुत सफाई नहीं रख पाता है, कोई सुबह उठता है तो घर में कोई दूसरा बहुत लेट उठता है, कोई हाउस होल्ड कोर्स में मदद कराता है तो कोई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कराना चाहता। तो हम ये डिफरेंट हैं और इसके कारण ही छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और इस समय हमें ये समझना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो संस्कार अलग अलग हैं, ये बहुत नेचुरल हैं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, भले हम कहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मेरे हैं तो थोड़े तो मेरे तरीके से होने चाहिए, हम सबकी थिंकिंग सेम होने चाहिए, हम सबकी आदतें सेम होनी चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सब एक आत्मा है और एक लंबी जर्नी पर है, और उसके कारण हमारे ऊपर अलग अलग इन्फ्लुएंस रहा है। एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का, फैमिली का, रिलीजन का, कल्चर का, इस बर्थ का इन्फ्लुएंस, पीछे के बर्थ का इन्फ्लुएंस, इसलिए हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत अलग होंगे। बाहर की आदतें भी अलग दिखाई देंगे और अंदर के संस्कार भी। कोई बहुत काम होगा, बहुत स्टेबल होगा, कोई छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएगा, कोई बहुत होपफुल होगा कि नहीं फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, कोई हर बात में घबराता रहेगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट करता रहेगा। तो पहली चीज, ये जो डिफरेंट डिफरेंट संस्कार हमको दिखाई देंगे, इनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब ही है कि उनके संस्कार राइट हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई सफाई नहीं रखता है तो वो राइट कैसे हो सकता है, टाइम पर नहीं उठता है, टाइम पर खाता नहीं है तो राइट कैसे हो सकता है, लेकिन ये उनका संस्कार है, उसको देखते हुए हम डिस्टर्ब नहीं हो। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाली आत्मा को स्वीकार करते हैं, एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन उसको रेडिएट होता है, उसके मन में ये चीज उसको रियलाइज होती है कि नहीं ये मुझे समझते हैं। अगर हमें किसी का कोई संस्कार ठीक नहीं लग रहा तो बहुत ग्रेस के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ, क्रिटिसाइज करते हुए नहीं, रिजेक्ट करते हुए नहीं, लेकिन बहुत ही प्यार से उनों के सामने वो बात रखें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्या वो थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं या कोऑपरेट कर सकते हैं या जहां भी आपको उन्हों को सहयोग चाहिए। लेकिन वो वाइब्रेशन पहले उन्हों को भेजना है, क्योंकि हम उनको संस्कार चेंज करने के लिए कह रहे हैं। संस्कार चेंज करना बहुत इजी नहीं होता, ऑन ऑफ का बटन नहीं है। संस्कार चेंज करने के लिए उन्हों को सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए सही सोचना है। तो वो वाइब्रेशन उन्हों को वो संस्कार चेंज करने में मदद करेगा। हमें एक चीज याद रखनी है कि हम सबके ओरिजिनल संस्कार शांति, शक्ति, प्रेम, खुशी के ही हैं। जैसे ये साड़ी ओरिजिनली व्हाइट है, ऐसे हम भी ओरिजिनली पीसफुल और हैप्पी हैं। इसलिए तो हर एक को वही चाहिए, पर वो हम ओरिजिनली हैं। पर इतनी लंबी जर्नी पर जाने के बाद जैसे साड़ी पर दाग लग जाता है, ऐसे हर एक की आत्मा पर कोई ना कोई दाग लगा हुआ है। कोई थोड़ा सा फियरफुल है, कोई थोड़ा डरपोक है, कोई थोड़ा सा गुस्सा कर देता है, कोई थोड़ा इरिटेट हो जाता है, पर वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हमें उनके दाग को देख करके इरिटेट नहीं होना, अपसेट नहीं होना, रिजेक्ट नहीं करना, लेकिन हमें पहले अपने को ठीक रखना है और वो अपना दाग मिटा सके उसमें उनको सहयोग देना है। तो ही हम एक्चुअली कहेंगे कि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और सही रीति से पेरेंट होने का, लीडर होने का रोल निभा रहे हैं। तो इन चीजों का हम खास ध्यान दे सकते हैं।
थैंक यू श्रेया बेन, आपने बहुत अच्छी तरह से आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों के बारे में बताया। हमको ये बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। वैसे जीवन रूपी यात्रा में ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इस नेशनल हाईवे को देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। अगर हम स्वयं भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने स्पीड लिमिट को देखकर ध्यान रखें, राइट, फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अचानक कोई गाड़ी कोई नियमों का उल्लंघन कर सकती है, ओवर स्पीडिंग कर सकती है, ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर सकती है, लेन कट कर सकती है। और ऐसे समय पर भले हम अपनी सुरक्षा क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अगर हमने सामने वाले का ध्यान नहीं दिया और अपने आप को नहीं बचाया, तो फिर भी अंतिम परिणाम तो ये होगा कि वहां पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे समय पर दूसरों के संस्कारों को भी हम समझते हुए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार करना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो परिस्थिति अनुभव कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने जान जोखिम में रखते हुए हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। वी हैव गॉट एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं गुस्से में क्रोधित होकर इन पर हाथ भी उठा देते हैं, इनको मारने पर उतर जाते हैं। इसलिए ऐसे समय पर हम श्रेया बहन से जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं अपनी तो रक्षा कर ही रहे हैं, वो अपना पीपीई पहन रहे हैं, लेकिन सामने वाले लोगों के इमोशंस को, उनके रिएक्शन से, उनके संस्कारों से वो अपनी बचाव कैसे करें। ओवर टू यू श्रेया बहन।
हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का तो हम कितना भी धन्यवाद करें कम है। हमारे वेलबींग के लिए वो कितने प्रकार के रिस्क उठा रहे हैं। हम तो अपने घर में फिर भी सेफ हैं, लेकिन हम स्वस्थ रह सके, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो, लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारी जो लाइफ जितनी कंफर्टेबल और इजी हो सके उसके लिए वो कितना रिस्क उठा रहे हैं, और इसलिए बार बार हम दिल से उनका थैंक्स करते भी हैं। लेकिन जो भी लोग इस समय पर बाहर जा रहे हैं उनको अपना बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है। नॉर्मली भी वायुमंडल के अंदर हम कई बार फील करते हैं, स्पेशली अगर डॉक्टर या नर्सेस हैं तो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर जो वाइब्रेशन है उसमें थोड़ा फियर, थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, क्योंकि आने वाले पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो फियर, पेन, ये नेचुरल वाइब्रेशन वहां पर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस समय ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, केवल पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर ही फियर में नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर की फैमिली भी फियर में है। हर रोज जब डॉक्टर अपने घर से जाता है या नर्स घर से जाती है तो कभी भी वो परिवार वाला इतनी चिंता नहीं करता, आज उनको भी डर है कि ये जा रहे हैं तो कुछ हो ना जाए, उस डॉक्टर नर्स को भी अंदर में चिंता है कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, उसके बाद मेरे परिवार को कुछ हो जाए। तो ये फियर और एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, हमें उन्हें सिर्फ फिजिकली हील नहीं करना है लेकिन इमोशनली भी हील करना है। डॉक्टर और नर्सेस के लिए तो कहते ही हैं कि वो बहुत कंपैशनेट होते हैं, पर मेडिकल फील्ड में आजकल एक टर्म सुनने में आ रही है जिसको हम कहेंगे कंपैशन फटीक, कि हमारे अंदर अभी ताकत ही नहीं रही है कि हम वो काइंडनेस और कंपैशन को रेडिएट कर सके। हम भी अंदर से कहीं ना कहीं थकते जा रहे हैं। तो पहले तो हमें अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। हमें हर रोज अपने को कहना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम अ फियरलेस सोल, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो इतनी सेवा करने से हजारों लाखों लोगों की दुआएं इस समय हमारे साथ हैं, और जिनके साथ इतनी दुआएं होती हैं उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी तो कई बार कहते हैं ना कि अभी दवा नहीं दुआ करो, मना दवा से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी दुआएं हैं। हमारे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, हमारे परिवार को इतने लोगों की दुआएं हैं, तो नेचुरली हम हेल्दी भी रहेंगे। जिनके पास दुआएं होती हैं वो फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली भी स्ट्रांग रहेंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए ये तो बहुत सुंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम दुआएं कमाएं। अपना रोल प्ले करते हुए हम बहुत परमात्मा के साथ कंबाइंड रहें, परमात्मा की शक्ति को अनुभव करें, अपने को कहें, उसको भी कहें, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, आपको मुझे जैसे यूज करना है यूज करें, ये पेशेंट्स आपके बच्चे हैं, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, आप बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस करेंगे। ऐसे ही हर कोई जो भी इस समय सेवा कर रहा है, चाहे बैंक्स में है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में है, चाहे हमारी पुलिस है, हम उन लोगों के संपर्क में जरूर आ रहे हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, जो हो सकता है कि थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस एक चीज याद रखें, हमारे ही फैमिली मेंबर हैं, थोड़े से कमजोर हैं, इस समय हमें उन्हें सहयोग देना है और अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करते हुए दुआओं का खाता जमा करें।
श्रेया बहन, आपने हम सबको दुआओं के खजाने के बारे में बताया, और मुझे लगता है वर्तमान समय पर सबसे बड़ा जो सुरक्षा का जो कवच है और वो है दुआएं। और दुआएं कमाना बहुत सहज भी है अगर हम हरेक के प्रति शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें। और वर्तमान समय पर अगर हम किसी का मनोबल अगर बढ़ा सकते हैं, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मुंबई से बहन प्रीता मजुमदार जी, जो एक बहुत प्रसिद्ध गायिका है, उनका मैसेज मिला कि वो अपना अनुभव और अपना संदेश हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। वेलकम यू सिस्टर प्रीता जी, एंड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना संदेश हम सब तक जरूर पहुंचाइए।
नमस्कार, मैं हूं प्रीता मजुमदार। आज मैं आप सबके साथ मेरे कुछ थॉट शेयर करने आई हूं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि टेंशन, चिंता, अनसर्टेनिटी जैसे हमारे दोस्त बन गए हैं। ऊपर से ये नई मुसीबत कोरोना, मेंटली फाइनेंशियली हम सबको जैसे एक नए चैलेंज के सामने खड़ा कर दिया है। इन सब से लड़ने के लिए मुझे लगता है मन से बड़ा दवा कुछ भी नहीं है, और वो मुझे मिला है ध्यान से। बहुत साल पहले, करीब 20 साल, मैं ब्रह्मा कुमारी के संस्पर्श में आई मेरे संगीत के द्वारा। इनसे मुझे सीख मिली कैसे मन को शांत रख के हम सारी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मन जैसे बेलगाम घोड़े के जैसा है, जिसको काबू पाने का कौशल मन में ही छुपा है। सुनने में काफी अजीब लगता है, पर है ये 100% सच। मेरी ये अनुभूति मैं चाहती हूँ आप सबको भी मिले। ब्रह्मा कुमारी के संकल्प से जुड़े और खुद को सवारे सद्भावना से, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे अनुप्राणित हो और एक नई सुखमय पृथ्वी का निर्माण करे।
That was very sweet of you, dear sister. और मुझे विश्वास है कि आपका अनुभव हम सब के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगा मेडिटेशन सीखने के लिए और अपने जीवन में अपनाने के लिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रसिद्ध गायिका है, तो किसी भी एक अच्छे गीत का, है ना, दो लाइन आप गुनगुना दीजिए और फिर हम सभी एक राज्यों की एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाएंगे। गीत के बाद मैं सिस्टर श्रेया बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें इस राज्यों की आंतरिक यात्रा पर लेकर जाएं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति।
वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो।
अभी हम दो मिनट के लिए मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। आप जहां पर भी हैं कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, मन को चारों तरफ से समेट लें, अपने को याद दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक पावरफुल बीइंग हूं। एंजाइटी और फियर नेचुरल नहीं है, लेकिन पीस, पावर और प्योरिटी मेरी नेचुरल नेचर है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है, क्योंकि परमात्मा के दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। इतनी दुआएं हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति हर समय मेरे साथ है। भले परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना है। मुझे हल पर सही सोचना है, सही महसूस करना है, वो फील कर कैसे वो वाइब्रेशन मेरे से होते हुए मेरे घर में फैल रहा है, उसका सहयोग मेरे परिवार वालों को मिल रहा है, मेरे घर से होते हुए वो प्योर वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रहा है। जो भी आत्माएं थोड़ी सी कमजोर है उन्हों को भी इस वाइब्रेशन का सहयोग मिल रहा है, यहां तक कि प्रकृति के पांच तत्व भी प्योर होते जा रहे हैं। तो सारा दिन सही सोचकर इस वाइब्रेशन को विश्व में रेडिएट करते हुए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना है। ओम शांति।
विस्तार बहुत सुंदर और शोभनिक होता है, पर बीज में छिपा सार होता है। वक्ताओं के सुंदर विचार हम सब ने सुने, आइए आज उनसे सुनते हैं जिनके संकल्प रूपी बीज से ये आयोजन संपन्न हुआ है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय दिव्य प्रभा बहन द्वारा इस ऑनलाइन सीरीज के आयोजन के प्रति उनकी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल और टूरिज्म विंग की पिछले लगभग 15 सालों से हेडक्वार्टर माउंट आबू में हर वर्ष कॉन्फ्रेंस रहती है, लेकिन आप सबको हमें वहां आमंत्रित करना था, लेकिन कहा जाता है समय की बलिहारी है कि हम आपको वहां पर लॉकडाउन के कारण आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप सबकी याद तो हमें आई ही और हमने सोचा कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट ट्रैवल और टूरिज्म विंग के लिए हम ऑनलाइन कुछ सीरीज हैं वो रखें, और भले वहां न पहुंच पाए हो लेकिन अपने अपने घरों में तो अभी वक्त है, तो क्यों नहीं हम ऑनलाइन वाणी के द्वारा इस साइन के साधन द्वारा आपके घर तक पहुंचे और जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो विषयों की चर्चा होती है और जो आध्यात्मिक मेडिटेशन के लेक्चर्स होते हैं तो आपके घर तक हम क्यों न पहुंचाएं? इस सोच ने ये कार्यक्रम बनाने की प्रेरणा मिली और हम सोचते हैं कि भले सब घरों में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और अभी फुर्सत भी है, मेंटली भी फिजिकली भी, तो क्यों नहीं हम इस चीज का लाभ आप सब तक पहुंचाएं। और 3 दिन के अंदर फर्स्ट डे शुक्रवार को 15 तारीख को हमारे डॉक्टर्स गिरीश भाई और ई गिरीश भाई की जो चर्चा रही कि हम अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल करें, और साथ साथ 16 तारीख को शिवानी बहन के भी विचार आप सबने सुने कि कैसे हमारे सोच का प्रभाव हमारे तन पर भी, हमारे मन पर भी और समाज और सारे विश्व पर हमारे विचारों का कितना गहरा प्रभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच हमें अपने सोच को कैसे रखना चाहिए उसकी दिशा भी हमें मिली। और आज लास्ट डे रविवार के दिन सुबह 10 से 11 हमारे स्वामी भाई श्रेया बहन उनकी भी चर्चा है कि कैसे हमारे एक्शन में करुणा का, दया का भाव है वो होना चाहिए। तो इन तीन दिवसीय लेक्चर सीरीज के अंदर हमें इन सब बातों की नॉलेज और साथ साथ मेडिटेशन का भी शाम को 5 से 6 अभ्यास कराया जाएगा। और हमें हमारे जीवन के अंदर देखते हैं कि हम भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रा के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हो चाहे हम एंजॉय के लिए यात्रा पर जाए, तो उसमें कई प्रकार की ऊंचाई नीचाई तो आती ही है। और वैसे ही हमारे जीवन यात्रा है वो भी सरल किसी की न रही है और न रहेगी, उसमें भी ऊंचाई नीचाई आएगी, रुकावटें तो उसी के अंदर भी आनी ही है, लेकिन हमें अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ रहना है। हमें हिम्मत रखनी है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम सफल होंगे, सक्सेस होंगे और हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ये दृढ़ सोच हमारे में शक्ति भरती है। इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर बहुत सुंदर बात बताई गई कि चाहे फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से हम यात्रा कर रहे हो, हमारी मंजिल पर जहां से शुरू किया और मंजिल पर पहुंचे उसके बीच में बहुत सारे साइड सीन आते हैं और बहुत सारी रुकावट आती हैं, लेकिन उस साइड सीन को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं और रुकावटों का सामना करके आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, नॉलेज और पावर। किसी भी प्रकार की रुकावट आए, समस्या आए, लेकिन समझ और शक्ति इन दो के आधार से हम अपने मंजिल तक पहुंच ही सकते हैं। और उसमें भी आध्यात्मिक नॉलेज और राजयोग का अभ्यास वो हमारे जीवन में हमें बहुत प्रेरणा और बहुत हिम्मत और शक्ति को भरता है और उससे हम अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, बादल आते हैं और जाते हैं, जीवन में कभी भी सुख सदा नहीं रहा है और दुख भी सदा नहीं रहा है, परिवर्तनशील समय है, ये समय भी बदल जाएगा और अच्छे दिन आएंगे ही। इस दृढ़ता के साथ हमें अपने जीवन में चलना है तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी ही। और साथ साथ आज इन तीनों दिन के प्रोग्राम में हमारे ट्रांसपोर्ट विंग के, रोडवेज, रेलवेज और टूरिज्म के हमारे अतिथियों ने बहुत अच्छी शुभकामनाएं इस सीरीज के लिए दी है, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने खूब अच्छी तरह से मनन, चिंतन, प्रयास के द्वारा बहुत अच्छी तरह से अपने विचारों को आपके सामने रखे, उनको भी अभिनंदन देती हूँ। और उसके अलावा हमारे गायक भाइयों को भी, बहनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि जब जब इस विद्यालय का प्रोग्राम हो तो सदा उन्होंने बहुत प्यार से अपनी सेवाएं जब कहा तब दी है। ऐसे हमारे हरीश मोयल, प्रीता मजुमदार और स्नेहा शंकर देवोजीत, ये सदा ही हमारे सहयोगी रहे हैं और अपने सुंदर गीतों के माध्यम से भी हमें बहुत अच्छी समझ और एंजॉय कराया है, तो उनको भी मैं नहीं भूल सकती। और साथ साथ ये जो आवाज आप तक पहुंचाई है, ये दृश्य आप तक पहुंचाए हैं, ये हमारी प्रभुपन की टीम अवेकनिंग, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी चैनल है, जिनके द्वारा आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और उसके बाद भी यूट्यूब के द्वारा भी जब आप चाहें तब विचारों से बार बार आप सुन सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। ऐसी हमारी ये टीम की भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और ये शुभ भावना रखती हूँ कि जो विचार आपने सुने हैं जो मेडिटेशन के अभ्यास थोड़ी सेकंडों के लिए भी आपने किया है, तो उसके अभ्यास को आप अपने घरों में भी, अपने कार्यक्षेत्र में भी जारी रखें और इस मेडिटेशन का लाभ लें। और ब्रह्म कुमारी विद्यालय की हर जगह ब्रांच है, जहां भी आप हो, समीप ब्रांच हो, तो वहां भी आप कनेक्ट रह करके इस आध्यात्मिक ज्ञान और योग का लाभ अवश्य लेते हैं और लेते रहेंगे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। ओम शांति।
वक्त न कभी थमा है, वक्त न कभी थमेगा, हमारा आपसे मिलन सदा होता ही रहेगा। शांति के हीरे मोती छिपे हैं अपने ही आंचल में, न जाने क्यों लोग ढूंढते हैं इन्हें जंगलों में। राजयोग मेडिटेशन द्वारा शांति की गहन अनुभूति करने के लिए शाम 5 बजे आपका इंतजार रहेगा।
Awakening to a new way of living. Let's meditate for 1 minute.